नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम गोल्ड चैनल। आज कार्यक्रम छू लो आसमान, आपसे रूबरू होंगी जानी मानी एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह। इनसे बातचीत की नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, आईबीजी के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मिटिसेन।
तुझसे हारी हमारे साथ आज हैं आभा सिंह जी। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, लॉयर भी हैं, बड़े एडवोकेट। सो थोड़ा सा हमें ही आज थोड़ा डर लग रहा है इनसे बात करते हुए।
नहीं, ये तो आपकी हाजिर जवाबी है।
सो वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू सो मच,
आपने अपना टाइम निकाला। आई नो कि आपका कोर्ट का टाइम है, लेकिन आप आए यहाँ पे।
विकास जी, आपका शो इतना अच्छा है कि मुझे आना ही पड़ा।
चलिए, ये भी एक अच्छी बात है।
Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
aise nahi, ga ke sunao na.
Ga ke? Acha. Do lafzon ki पुरानी या है मोहब्बत या है
बताइए, आप सबसे पहले ब्यूरोक्रेट थे, पोस्टल सर्विस में थे, कितने साल पहले?
देखिए, मैंने 1991 में आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद पहले मैं बॉम्बे कस्टम्स में कस्टम अप्रेजर थी। चार साल मैंने बॉम्बे कस्टम में काम किया और उसके बाद 94 में दोबारा सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में क्लास वन ऑफिसर बन के मैंने ज्वाइन किया। उसमें मैं महाराष्ट्र में थी काफी दिन, फिर मैं लखनऊ गई, फिर दोबारा मैं मुंबई में डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज थी महाराष्ट्र और गोवा की। फाइनली मैंने 2012 में सरकारी नौकरी को त्याग दिया।
अच्छा, थक गए थे या कुछ बेटर मिल गया?
देखिए, एक तो सरकारी नौकरी में बड़ी बंदिशें होती हैं, आप को ये मत बोलो, ये मत कहो, इधर मत जाओ। सैटरडे संडे अगर आपको सरकारी नौकरी में कहीं जाना है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन अगर आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं तो आपको स्टेशन लीव की एप्लीकेशन देनी होगी।
काम के लिए भी जाना है तो भी,
छुट्टी के दिन भी जाना है तो भी, आप अपने पर्सनल जा रहे हैं, स्टेशन लीव परमिशन लगती है आपको, उसके लिए आपका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकता
है।
लोग जानते नहीं ये बात कि आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते बिना अपने बॉस से परमिशन लिए, ऑफ वर्क के टाइम पे भी। इस तरह जो मैं आज आपसे बेबाकी से बात कर रही हूँ, अगर मैं सरकारी नौकरी में होती तो मैं परमिशन लेनी पड़ती और मैं बोल भी नहीं सकती थी। शायद अगर कुछ ऐसा बोल दिया होता तो उसके लिए इंक्वायरी हो जाती। और उससे बड़ी बात, सरकारी नौकरी में एक स्टेज के बाद आप ग्रो नहीं कर सकते। मुझसे एक बार अर्नब गोस्वामी ने ही पूछा था कि आपने आभा क्यों नौकरी छोड़ी क्लास वन। मैंने कहा मैं अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि आपका जो हुनर है वो आपको दबा के रखना पड़ता है।
ये बताइए, आप कहाँ के हैं, बॉम्बे के हैं या कहीं और के?
मैं आमची मुंबई को ही अपनी कर्मभूमि मानती हूँ, लेकिन
जन्मभूमि
जो थी उत्तर प्रदेश है। मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ से मैंने, कहते ना पहले आप
हाँ।
तो लखनऊ से मैंने लोरेटो कॉन्वेंट से अपनी स्कूलिंग करी और एशिया का फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज होता था इजाबेला थोबर्न कॉलेज, आईटी कॉलेज, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया। और बाद में मैंने आज जो इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैंने जेएनयू से एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ये मेरी पढ़ाई है। और फिर मेरी शादी हो गई महाराष्ट्र काडर के आईपीएस अफसर से, तो मुझे महाराष्ट्र में आना पड़ा।
ले जाना चाहिए था वहाँ
पे। लेकिन महाराष्ट्र काडर था, लेकिन माँ बाप के जो वैल्यूज थे कि रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में मत रहना, चाहे हस्बैंड आईएएस हो आईपीएस हो, लेकिन आभा नाम रखा है तो आभा की आभा हमेशा रहनी चाहिए। तो मैंने उसके बाद आईएएस की परीक्षा दी शादी के बाद, बेटा होने के बाद, और मैंने उसके बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और नौकरी की। और नौकरी करते हुए जिस तरह मैंने सिस्टम देखा कि आप सच्चाई के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, आप आवाज नहीं उठा सकते, तो मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 2001 में दोनों बच्चे होने के बाद मैंने लॉ किया और मैंने कानून की पढ़ाई की कि मैं अब इस देश में सच्चाई के लिए खड़ी होंगी, जो इन लोगों की आवाज नहीं है उनको मैं आवाज दूंगी। और इसीलिए 2012 में मैंने, मेरी 15 साल क्लास वन नौकरी बाकी थी, मेरे बैचमेट्स आज भी ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र में पोस्ट मास्टर जनरल है, लेकिन ने छोड़ा कि मैं देश के लिए और महिलाओं के लिए और जिनके पास हक की लड़ाई के लिए कोई नहीं है उनके लिए मैं अपनी आवाज दूंगी।
हमने सुना है कि बहुत स्ट्रांगली आप ये करती हैं, कुछ लोग थोड़ा सा नाखुश भी रहते हैं आपके
जी,
साथ।
हाँ, ये बात है, आप भी आप बिल्कुल, अगर आप शीशा किसी को दिखाएंगे तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। और कितनी बार होता है टेलीविजन पे, अगर कोई मेन 9 o'clock डिबेट में किसी बड़े इशू पे है, चाहे वो नाम नहीं लूंगी, बट कई लोग जो फेमस है उनके ऊपर पुलिस केसेस हुए हैं, मी टू मूवमेंट में लोगों के नाम हुए, तो आपको सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी। और वकील का काम होता है कि न्याय दिलाए। मैं गीता को फॉलो करती हूँ, कर्म, तो मैं मानती हूँ कि जो सच है अगर मैं नहीं बोलूंगी तो अगर उसे कोई नाराज भी हो जाए, और ऐसे ही जैसे हिट एंड रन का केस, लेकिन मेरा जो मेन एम था कि अगर कोई बच्ची के गाड़ी चलाता है तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट होगा। और आप मानेंगे नहीं, मेरे इस हिट एंड रन केस के बाद मुंबई पुलिस के फिगर्स हैं कि एक्सीडेंट केसेस कम हो गए, क्योंकि जब लड़के पार्टी के लिए जाते हैं तो उनकी माएं कहती हैं ड्राइवर लेके जाओ, या फिर ड्राइवर बुला लो, और या फिर टैक्सी से जाओ। तो ये देखिए, एक अच्छा केस करने का ये फायदा होता है कि लोग जो पहले पी के गाड़ी चलाते थे अब वो नहीं चलाते।
अभी बहुत कम हो गया है।
बिल्कुल, ये उसी केस के बाद हुआ।
हाँ, पुलिस भी बहुत चेकिंग करती है।
हाँ, क्योंकि
हर जगह रोक रोक के वो जो
है, और बड़े बड़े लोग भी अरेस्ट हो सकते पी के गाड़ी चलाने में, तो लोगों के मन में कानून के प्रति एक डर भी हुआ। और बाकी केस भी, जैसे AIB रोस्ट का केस है, इसमें ओब्सिनिटी इन सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इसमें मैंने कई लोगों पे FIR कराया जिसमें बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, और ये NSCI में हो रहा था। तो बात ये थी कि आप हिंदुस्तान में जब एक हम कल्चर की बात करते हैं तो महिलाओं के रिस्पेक्ट की बात होनी चाहिए, और उन्हीं महिलाओं को आप एक ऑब्जेक्ट बना के उनके ऊपर भद्दे मजाक करेंगे। तो मुझे ये केस मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि मुझे देश की महिलाओं के स्वाभिमान और उनकी अस्मिता की रक्षा करनी थी। तो उसमें FIR हुई, AIB रोस्ट हटाया गया, और इसलिए लोग नाखुश हैं। कुछ को लगता है कि मैं सेलिब्रिटीज पे केस करती हूँ, कुछ को लगता है मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर 294 IPC में ओब्सिनिटी इन पब्लिक प्लेस ऑफेंस है, 3 महीने की सजा है, फिर मैं ओब्सिनिटी नहीं होने दे सकती।
जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
हा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा।
ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
हा हा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
हा हा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरी बैया भर लो सजन
अजियाना दिल में समाना अजियाना दिल में समाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा
हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
हम थोड़ा पीछे जाएंगे आप पोस्टल सर्विस में यूपी में सोलर पावर आपने करवाया था आपके पोस्ट ऑफिस में और ये काफी वक्त पहले था तब सोलर पावर की बात ही नहीं होती थी तो आप कहाँ से इसमें आ गए
देखिए मैं जब 2005 में मेरा पोस्टिंग हुआ लखनऊ में डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज उत्तर प्रदेश मुंबई से मैं गई और वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन होना शुरू हुआ था आपने रूरल एरियाज में कंप्यूटर दे दिए वहाँ बिजली नहीं
आती नहीं तो क्या करें
16-16 घंटे बिजली नहीं आती थी जब मैं इंस्पेक्शन करने जाती थी तो मेरा पोस्टमास्टर एक मोमबत्ती लेके रजिस्टर भरता रहता था तो मैंने कहा कि कंप्यूटर आगे चलेंगे नहीं तो क्या फायदा धूप वहाँ पे बहुत होती है तो मैंने वहाँ पे एक गौरीगंज करके पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे सोलर पैनल लगाए और सोलर पैनल से 8 घंटे बिजली आई कंप्यूटर चले इन्वर्टर चार्ज हुआ और कई लोग वहाँ देखने आए और इनफैक्ट उस काम की मेरी इतनी सराहना हुई और जगह जगह ये बात गई जैसे आज आप पूछ रहे हैं तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लीन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था और वो लोग भी देखने आए कि कैसे इन्होंने जबकि कोई देश का फोकस नहीं है लेकिन एक कमिटमेंट था सरकारी नौकरी में एक था कि हम मैक्सिमम अच्छी से अच्छी चीजें कर सकें और उस वक्त लीड इंडिया कैंपेन में भी मैं वुमेन सेक्शन में विनर रही मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई 2008 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप मिली कि मैंने इतना अच्छा काम किया और जो मेरी लीडरशिप स्किल्स थी तो उस वक्त मेरा बेटा 18 साल का था और बेटी 13 साल की थी उसके बाद मैंने जाके वहां पे थीसिस करी कि इंटीग्रेशन ऑफ एशियंस इन यूके मैंने स्टडी करी कि जो हिंदुस्तानी लंदन आए हैं क्या वो बदले हैं कि नहीं बदले हैं और मैंने ये पाया कि जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं वो है। बिचारी वैसी की वैसी पंजाबी ही बोल रही हैं उनको ना अंग्रेजी मालूम है ना उनको मालूम है कि वो लंदन में है वो यही जानती है कि सुबह से उठ के वो खाना बनाती है कपड़े धोती है और उनका जीवन वही है
कितने दिन थे वहां पर आप
मैं वहाँ 6 महीने थी और मैंने पूरा सेमेस्टर किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरा वो पेपर भी बड़ा अप्रिशिएट हुआ बल्कि वहाँ पे जो पेपर निकलते हैं मैनचेस्टर वगैरह से कुछ डेलीज निकलते थे न्यूज़पेपर उसमें उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी छापा क्योंकि दे फाउंड व्हाट अ नॉवल स्टडी आई डिड मैं ओल्ड एज होम्स में गई वहां मैंने विमेन को इंटरव्यू किया तो मैंने देखा कि हर जगह विमेन की जो पोजीशन है जब तक हम मेहनत नहीं करते उनको एक पोजीशनिंग नहीं करते तब तक महिला की पोजीशन वही रह जाती है
महिला के पोजीशन के बारे में मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी डॉटर खुद हम तो जैन मारवाड़ी फैमिली हैं तो थोड़े से बैकग्राउंड तो रहता ही है बैकवर्ड रहते हैं तो एक दिन आके बोली डैड मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंट्री मिल गई है एडमिशन 2 साल का कोर्स मास्टर्स ऑफ फाइनेंस आई थिंक तो मुझे 2 दिन में सोचा कि एक लड़की को अकेले कैसे भेज दूँ क्या करूँ सारे अपने बिरादरी वाले बोलेंगे कि क्या करा फिर मैं बोला जातू
शाबाश ऐसे ही फादर होने चाहिए मैं आज यहाँ इस माध्यम से यही कहना चाहूंगी मैं एक लॉयर हूँ आए दिन केसेस देखती हूँ और मैंने देखा है कि अगर हमको महिला सशक्तिकरण करना है विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर आप जैसे फादर से ही वो शुरू होता है जो अपनी बेटी को बेस्ट एजुकेशन दे बेटी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें क्योंकि अगर आपने उसकी रूट्स ही कमजोर कर दी फाउंडेशन ही कमजोर कर दी तो आगे उस पर अत्याचार होने ही वाला है लेकिन अगर एक बाप अपनी बेटी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजता है जबकि पूरा समाज उसके खिलाफ हो या प्रेशर डाले तो वो लड़की तो आगे चल के अपना नाम करेगी और मुझे मालूम है वो कर रही है
आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है एंड शी इज अ टॉप पर्सन इन दैट कंपनी
दैट इज आई थिंक बिल्कुल आई थिंक मार्च इज अ वुमेन्स मंथ एंड हियर इज अ फादर जो अपनी डॉटर को इतना आगे ले गए तो मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो अपनी बच्चियों की शिक्षा के प्रति ध्यान दें जैसे मेरे फादर ने कहा कि मैंने तुम्हारी आईपीएस से शादी कर तो दी लेकिन डो नॉट लिव इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी आभा की आभा ही नाम आगे आना चाहिए ना कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो कि तुम उसकी पत्नी हो तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पे जगह बनाई
वेरी गुड
La 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 Yaadon ki baraat nikli hai aaj bhi शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे आ तुम भी गाओ ना
हमारे साथ हैं मिस आभा सिंह ये हैं सोशल एक्टिविस्ट मुझे पता नहीं है कि पहले सोशल एक्टिविस्ट हैं या एडवोकेट हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट तो हैं तो वो तो पहले नहीं आता है लेकिन आज ये दो चीज में से आपको क्या अप्लाई होता है एडवोकेट अप्लाई होता है या सोशल एक्टिविस्ट
देखिए एडवोकेट तो मेरा एक अब नौकरी छोड़ के मेरा प्रोफेशन है बट जो मेरा पैशन और कमिटमेंट है वो एक्टिविस्ट का है और ये जो सोशल एक्टिविस्ट थी आभा वही सोशल एक्टिविस्ट ने नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया इसलिए ब्यूरोक्रेट फॉर्मर हो गया और आज जो है जैसे अगर आप देखिए वो पालघर का एक इंसिडेंट था जहां दो बच्चियों को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया था मैंने उस वक्त अकेले हिम्मत करके मैं निकली और मैंने विमेन कमीशन में जाके विमेन कमीशन में कंप्लेन करी और मैंने तब तक वो मामला नहीं छोड़ा जब तक उन पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कानून कहता है कि किसी भी महिला को आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले नहीं बुला सकते तो इन्होंने कैसे बुलाया इन्होंने रात में बुलाया उन लड़कियों को और पेरेंट्स इतने डरे हुए थे वो लेके चले गए तो ये ऐसे इश्यूज हैं अभी जैसे आप अगर देखिए बॉम्बे जिमखाना के सामने एक वाटर फाउंटेन है पंचम प्याऊ वो बीएमसी तोड़ रही थी ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने कहा गरीब आदमी यहाँ पानी पीता है और मैंने छुट्टी के दिन वो एनजीओ ने मुझे कॉन्टेक्ट किया मैंने छुट्टी के दिन जाके उस पे स्टे लाके दिया मैंने कहा विदेशों में आप जाते होंगे वहां पानी खरीद के पीना पड़ता है हिंदुस्तान में अगर आप वो हाल कर देंगे तो गरीब जनता कहां जाएगी तो ये एक्टिविस्ट जो है आभा सिंह ये इंश्योर करती है कि लोगों को न्याय मिले और इसीलिए मैंने एक धारवी में लीगल एड सेंटर भी खोला है जहां पे मैं विमेन हुआ फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज उनको फ्री में मैं लीगल एडवाइस देती हूं उनको रास्ता दिखाती हूं कि कैसे वो उनको न्याय मिले
ऐसा सोशल एक्टिविस्ट आप विमेन्स राइट के इसमें बहुत एक्टिव हैं विमेन्स राइट्स जेंडर इक्वालिटी जस्टिस इसके बारे में और थोड़ा बताइए, आपने कुछ तो बताया ही है अभी।
देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज भी उस स्टेट में चाइल्ड मैरिज होती है, आज भी डिलीवरी के वक्त महिलाएं मर जाती हैं, आज एनसीआरबी फिगर्स कहते हैं कि मैक्सिमम ऑनर किलिंग्स
अभी भी होती हैं,
होती हैं उसी अच्छा? बेल्ट में होती हैं, एसिड अटैक जो कि अब एक ऑफेंस हो गया है, अगर आप देखिए कोई बच्ची कॉलेज जा रही है लड़के उसको पीछा करते हुए कॉलेज तक जाएंगे, स्टॉकिंग जिसको अब हम बोलते हैं जो कि अब एक कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, स्टॉकिंग, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग, तो इस तरह से जब महिला प्रताड़ित करी जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे शुरू से था जब मैं देखती थी, इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में जब मैं देखती थी कि पुरुष लोग आते थे पहले उनको खाना सर्व होता था, जो अच्छा अच्छा खाना होता तो पुरुषों को दिया जाता था, बचा कुचा औरतों को बच्चियों को दिया जाता था, तो मैंने तब से सोचा था कि मैं बराबरी करके रहूंगी और बराबरी में महिलाओं को लाऊंगी, इसलिए जेंडर जस्टिस और विमेन एम्पावरमेंट की बात है। आज भी मैं देखती हूं पढ़े लिखे समाज में अगर कोई महिला अपने पति से कुछ बोल देती है या कोई उसके खिलाफ बोलती है, पति का हाथ तुरंत उठ जाता है महिलाओं पे। मेरे पास रोज महिलाएं आती है केसेस अच्छा? लेके जहाँ पे उनको आज भी
हाथ कैसे उठाते हैं?
बस यही मैं बता रही हूँ, ये तो मैं कहूंगी उस पति उस पुरुष की विकायरता है जो हाथ से थप्पड़ मार के औरत की आवाज बंद करता है। तो इसलिए मैंने जो है मैंने विमेन फील्ड में काम किया क्योंकि ये महिलाएं चुप है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं इन गूंगी महिलाओं की आवाज बन के उठना चाहती थी, इसलिए मैंने LLB की डिग्री ली। मैं आज भी कोर्ट जाती हूँ तो कहती हूँ मैंने काला कोट पहन लिया है, अब मैं न्याय दिला के रहूंगी। तो इसलिए इन महिलाओं को मैं कॉन्फिडेंस देती हूँ कि तुमको अगर कोई तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको रोको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और महिलाएं जो है अगर उनको ये लग जाए कि उनके साथ कोई खड़ा है तो वो जरूर खड़ी होती है।
चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान।
हमारे साथ हैं आबा सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट है, तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैं हूँ विकास मित्र सेन। आपने बुक लिखी है, एक दो या तीन?
देखिए किताब मैंने, मुझे अभी तीन लिखनी है।
हाँ।
पर पहली जो मैंने लिखी स्त्री दशा और दिशा, ये इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगा सारा कानून अंग्रेजी में है और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज है, ये छोटे तबके में भी होता है, चाहे वो काम करने वाले लोग हैं या गरीब लोग हैं और उनको कानून नहीं मालूम है। आज भी लॉ का एडवांटेज या लीगल केसेस पढ़ी लिखी महिलाएं ही कर रही हैं। तो मैंने सारे लॉज को हिंदी में ट्रांसलेट किया।
अच्छा।
और रियल लाइफ केसेस को मैंने उस किताब में डाला, चाहे 498A डाउरी का यूज एंड अब्यूज, या 376A में रेप की डेफिनेशन क्या है, क्या कानून है, स्टॉकिंग कैसे ऑफेंस है, डिसरोबिंग कैसे ऑफेंस है, मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन में क्या सेक्शन होता है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क क्या होता है। तो ये सब मैंने हिंदी में करके ये किताब मैं उत्तर प्रदेश के लिए और हिंदी बेल्ट के लिए लाई कि महिलाएं सीखें, समझें और कानून के सहारा लेके न्याय मिले। बाद में मुस्लिम कम्युनिटी से भी बहुत डिमांड आई क्योंकि हमको मालूम है ट्रिपल तलाक के इश्यूज हैं और इश्यूज हैं, तो ये किताब अभी मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करी और ये उर्दू में स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि उनको भी उनका हक मालूम हो, कानून मालूम हो, ताकि वो अपने न्याय के लिए लड़ सकें। और अब इसका मैं इंग्लिश वर्जन लाऊंगी क्योंकि वैसे भी सारा कानून इंग्लिश में, बट मैं रियल लाइफ केसेस लाती हूँ और वो सामने लाके लोगों को सिखाती हूँ कि ये केस है, इसमें क्या रास्ता है और आप चुप रहे तो क्या नुकसान है, अगर आप लड़ गए तो आपको क्या मिलेगा। जी बिल्कुल, घर टूटते हैं, नुकसान होता है, फिर जैसे मैंने आपको बताया स्टॉकिंग में जिन लड़कियों ने कंप्लेन करी है, बाद में उन गुंडे लड़कों ने उन पे एसिड फेंक दिया है,
तो
ये भी हाँ, बट जरूरी ये है कि हम माइंडसेट बदलें। एक माँ अपने बेटे को सिखाए कि किसी भी लड़की को तुम इज्जत से देखो, और अगर आपका बेटा रेप करके आता है तो माँ की ड्यूटी बनती है कि बेटे को लेके पुलिस स्टेशन में जाए और कंप्लेन करे। देखा जाता है कि ये माएं अपने बच्चों को छुपा के एविडेंस डिस्ट्रॉय करती हैं, पैसे देके केस खराब करती हैं। तो मुझे लगता है माइंडसेट बदलने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम घर में बेटा बेटी को बराबरी से रखें और बेटों को समझाएं कि तुमको हर महिला की इज्जत करनी है, अपने आप मुझे लगता है क्राइम कंट्रोल हो जाएगा।
आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, रन समर, क्या है ये?
देखिए रण समर जो है, रण समर का मतलब होता है बैटल ग्राउंड, और रण बहादुर सिंह मेरे पिता का नाम था जो अब नहीं है, बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, और डॉक्टर समर बहादुर सिंह मेरे फादर इन लॉ का नाम था।
अच्छा।
और वो भी ऑल इंडिया रेडियो से ताल्लुक रखते थे।
Okay.
आज मुझे एकदम से याद आया। तो उनकी श्रद्धांजलि में मैंने रण समर करके एनजीओ बनाया है, जिसके थ्रू मैं जौनपुर में जहां से वो ओरिजिनली थे वहां पे मैंने वोकेशनल स्किल सेंटर्स खोले हैं, लखनऊ में मैंने वोकेशनल स्किल सेंटर्स खोले हैं जहां मैं महिलाओं और बच्चियों को कंप्यूटर सिखाती हूँ।
अच्छा।
सिलाई सिखाती हूँ। मैंने लखनऊ जेल में 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया ताकि वो कॉन्विक्ट्स जो कैदी वहाँ पे हैं उनको मैं एक नौकरी का साधन दे सकूँ कि जब वो जेल से निकले तो उनको नौकरी मिल जाए। और साथ ही साथ चूंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मुझे मालूम है कि माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो माइंड और डिवियंट होता है। तो वो कैदियों का मुझसे कहना था कि आपके इस कंप्यूटर से हमें इतना मेंटल पीस मिलता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे टैली सिखाइए ताकि बाहर जाके हमको जॉब मिलेगी। तो मैं इस तरह के काम करती हूँ रन समर के थ्रू। धारवी में भी जैसे मेरा लीगल एड सेंटर है जहाँ मैं जाती हूँ हफ्ते में, तो वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं महिलाओं के उनको देखती हूँ। तो रन समर के थ्रू मैं एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, वोकेशनल स्किल्स की बात करती हूँ, और साथ ही साथ सेमिनार्स करती हूँ।
अच्छा।
ताकि लोगों को मैं लॉज बता सकूँ, और जो जैसे पॉटहोल पे मैंने एक सेमिनार की कि मुंबई में इतने पॉटहोल्स हैं, मैंने बिलोरे को बुलाया और कैसे उनके बेटे की डेथ हुई, तो वो इश्यूज मैंने सामने लाए। फिर अभी जैसे मैं सीवेज वर्कर्स के ऊपर जैसे वो जाते हैं उनकी मृत्यु हो रही, उस पे पेपर तैयार कर रही हूँ। तो ये सब हम लीगल डिसेमिनेशन भी रण समर के थ्रू करते हैं।
तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे तो
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
में आपको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, हमने कहीं पढ़ा था अवार्ड साइटेशन, इसमें मेन मेन क्या है?
देखिए अवार्ड्स तो मैं कहूंगी लोगों का प्यार है, क्योंकि जब लीड इंडिया हुआ और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई, तब सडनली देश ने देखा कि इतनी प्रतिभावान एक महिला हो सकती है, इतनी नॉलेजेबल महिला हो सकती है। और उसके बाद मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 100 इयर्स का सेलिब्रेशन था, तो दे फेलिसिटेटेड मी एज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। फिर TCS आगे आया, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। फिर मुंबई मेयर ने मुझे वुमेंस डे पे फेलिसिटेट किया। अभी वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने, जो ऑल इंडिया वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन है, उसने मुझे अवार्ड दिया। और अभी हाल में इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन है, इनबा ने एक किताब निकाली है द फिनोमिनल शी, उसमें उन्होंने मेरा मेंशन किया है। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये लोगों का प्यार है, और शायद मैंने जो काम किया है और जो मैंने गरीब तबके के लिए आवाज उठाई है, और मैं बहुत प्रो बोनो केसेस करती हूं, उसकी वजह से मुझे लगता है ये अवार्ड जो है लोगों का प्यार है, और ये बिल्कुल मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और आगे जाऊं और देश के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हैं कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। राह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
को जो पूछना था हमने पूछ लिया। आपको कुछ कहना है जो हमने मिस करा हो या आपके हिसाब से मतलब की चीज़ है, काम की चीज़?
अभी जैसे सीएसटी की दुर्घटना हुई, ब्रिज गिर गया, मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, आभा जी आप केस करिए, आभा जी आप करिए। मैं कहती हूँ एक अकेली आभा जगह जगह तो नहीं जा सकती, हजारों आभा क्यों नहीं खड़ी हो सकती? तो आभा क्यों, लड़के भी हमारे खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप में जज्बा है समाज सेवा का, अगर आप में जज्बा है लोगों के लिए कुछ करने का, तो आप सोशल इश्यूज लेके खड़े होइए। लाखों पेड़ कट रहे हैं, पूछिए क्यों कट रहे हैं। पॉटहोल्स हैं आपके एरिया में, फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालिए कि ये पॉटहोल्स क्यों नहीं भरे गए, कितने टू व्हीलर्स की लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप खुद अपने आप खड़े होइए सच्चाई के लिए और न्याय के लिए। आप सोचिए, और जब तक आप औरों के काम नहीं आएंगे तब तक ये समाज बदलेगा नहीं। बहुत हो चुका हमारा सेल्फिश होना, सिर्फ अपने लिए सोचना। और मैं आज देखती हूँ लोग आते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। मैं चाहूँगी कि वो समाज के लिए आगे आए, और जब तक हम औरों के लिए कंसर्न नहीं होंगे तब तक ये देश हम जिस तरह का चाहते हैं वो नहीं बनेगा। जैसे एजुकेशन है, शक्ति मिल्स गैंग रेप में जो रेपिस्ट थे वो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। तो अगर हमने हर बच्चे को स्कूल भेजा होता तो वो बच्चे क्राइम नहीं करते। बच्चे जो ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनकी मदर दिन भर काम कर रही हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट करें, और जो समाज में फ्रेगमेंटेशन है, जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है, मैं चाहूंगी वो दोबारा लौटे। और ये न्यूक्लियर फैमिली में ही ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। आज फिगर्स कहती हैं कि 90% सेक्सुअल अब्यूज घर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी बच्चियों को अकेले छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम अवेयर हों, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करें और एक साथ मिलकर रहें।
और बहुत बातें कर सकते हैं लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच।
हमारे साथ हैं आभा सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। तो इनका ग्राउंडिंग बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए इतने सक्सेसफुल हैं।
इरादे भी बहुत मजबूत हैं।
वो तो दिखे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे छू लो आसमान में जानी मानी एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह से की गई बातचीत। बातचीत की नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, IBG के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मिटेसेन। कार्यक्रम निर्माण में सहयोग अनिशा विश्वकर्मा। FM गोल्ड के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।